Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो 12 वर्ष तक उसी तीर्थ में रहा, भूखा नंगा, कहीं भी लाइन में लगता, भीख मांगता, खाता, फटे पुराने कपड़े उसके शरीर पर, बहुत दुखी। लेकिन उस बच्चे को नहीं मालूम था, बहुत छोटा था वो, नहीं मालूम था कि मेरे माता पिता कौन हैं, कितने समृद्ध हैं, कितने ऐश्वर्य में रहते हैं, कुछ नहीं मालूम। और वो पति पत्नी हमेशा उस जगह पर आते जहां बच्चा खोया हो, तीर्थ यात्रा करते, वहां जरूर रहते, ढूंढते। अचानक रात्रि के समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, बारिश हो रही थी, आंधी तूफान, अचानक दरवाजा खटखटाया। जहां रुके थे वो धर्मशाला थी, सेठ जी ने दरवाजा खोला, एक 12 वर्ष का बच्चा, अंधेरा था। उस बच्चे ने कहा, मेरे को भूख लगी है, बहुत आंधी तूफान, और मैं थोड़ा आश्रय चाहता हूं, भोजन मिले, थोड़ा आश्रय, थोड़ा ये आप खोलिए, मैं थोड़ा आश्रय चाहता हूं। सेठ जी ने सोचा पता नहीं कौन है। सेठ जी ने कहा, यह जगह नहीं है, रात्रि का समय है, यहां कोई भोजन नहीं है, और बहुत धिक्कारपूर्वक नारायण उस बच्चे से बात कर दरवाजा बंद कर दिया। अन्य कोई आश्रय नहीं मिला, वो बच्चा वहीं आंगन में थोड़ा ओटला था, वहीं पर आश्रय मिला और वहीं लेटा रहा। बुखार था उस बच्चे को, भूखा, और उसी प्रकार नारायण उस ओटले पर लेटा रहा। सुबह के समय भोर में सेठ जी उठे, बड़े धार्मिक थे वो, दरवाजा खोला, बाहर देखा, वो बच्चा लेटा हुआ है, प्रकाश की किरणें नारायण उस पर पड़ रही थी। देखा, बहुत कम उम्र का, 12 साल का बच्चा, दया आ गई, और उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा, बुखार, ओहो बड़ी दया आई। अपने पत्नी को बुलाया, आज ऐसे नारायण वस्त्र हटाया उसके मुख से, देखा उसका चेहरा उसके बाप से मिलता जुलता, और उस बच्चे की सेवा की उन्होंने, और उनको एहसास होने लगा, हो ना हो, ये कोई हमारा तो बच्चा नहीं। आज यदि वो बच्चा हमारे सामने होता तो इसी उम्र का होता। उसको स्वस्थ किया, बाद में मालूम पड़ा कि हमारा ही बच्चा है, और उस बच्चे को बताया गया कि बेटा तुम हमारे बच्चे हो, और खोजने के बाद मालूम पड़ा इन्हीं का बच्चा था, और उस बच्चे को भी मालूम पड़ा कि मैं इन्हीं का बच्चा हूं। अब हुआ क्या वहां, अब बताइए। अब वो बच्चा दीनहीन है, अब वो गरीब हैं, वहां तो केवल जाना, केवल जाना, इसलिए अविज्ञात सखा, ये भगवान को अविज्ञात सखा बोला है। जो भगवान है हमारे अविज्ञात सखा है, निरंतर हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन अविज्ञात है, मालूम नहीं है, हर एक बार मालूम होना है बस। ऐसे नारायण हम आत्मा हैं, लेकिन मालूम नहीं है, उस बच्चे की तरह बिछुड़े हैं। और जैसे उस बच्चे को मालूम पड़ा कि ये मेरे माता पिता है, वहां कुछ हुआ क्या, क्या पैदा किया क्या, वहां कुछ भी क्रियाजन्य नहीं है, वहां सब कुछ ज्ञान है, ज्ञानात्मक है वहां। और यही वेदांत का मोक्ष है। वेदांत में कुछ करना नहीं है, केवल जानना, इसलिए आत्मावारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्याशितव्य, केवल जानना है, यहां कहीं जाना नहीं है, यहां का मोक्ष जाके मिलने वाला नहीं है। वेदांत का मोक्ष केवल जानना है, ज्ञान रूप है, अज्ञान की निवृत्ति रूप है, और एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, परम आनंद है, अब वहां दुख का कोई संस्पर्श नहीं। उस बच्चे ने जान लिया कि ये मेरे पिता है और मैं अरबपति हूं, आप उसके पास जो दुख हैं, भिक्षा का दुख, अपमान का दुख, अभावजन्य दुख, दारिद्र्य का दुख, बहुत सारी दुख वहां नहीं है, यही तो उसकी परमानंद रूपता और दुख की निवृत्ति है। इसलिए पहले तय हो कि हम कौन सा मोक्ष चाहते हैं। हम जाके दूर देश में, दूर काल में, लोक लोकांतर के रूप में मोक्ष है वो चाहते हैं, कि हम अपने आप को पाने रूप जो आत्मरूप मोक्ष है वो चाहते हैं। अब वो आत्मसत्ता क्या चीज है जो आत्मरूप मोक्ष को हमें पाना है, तो वो क्या चीज है, वो आत्मा क्या चीज है, उसको बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन, नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित, आजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विपश्चित न जायते न म्रियते, यहां विपश्चित आत्मा का नाम है, विपश्चित माने आत्मा, न जायते न म्रियते, आत्मा न उत्पन्न होती है और न पैदा होती है। जो हमारी संवेदना है वो उत्पन्न होने और मरने की संवेदना है। आपको कोई पूछे आपका जन्मदिन, जन्म तारीख, तो उस समय आपको अपनी जन्म तारीख याद आती है कि नहीं आती है? वेदांत तो कहता है कि आप न पैदा हुए और न आप मरेंगे। हाँ, आपको मैं पूछूं आपका जन्मदिन और उस समय आपके अंदर से स्फुरना हो, ओहो मैं तो अजन्मा हूं, तो आप कौन सी तारीख बताओगे? आपके अंदर से स्फुरना हो कि मेरा जन्म नहीं है, मैं आत्मा हूं, उस समय आप कहेंगे मेरा और जन्म कौन सी तारीख? आप हैप्पी बर्थडे किसका मनाते हैं? लेकिन उस समय अपने को लगता है कि नहीं ये शरीर है, आप किसका पूछ रहे हैं? उस समय इतना विवेक हो, कोई जन्म तारीख पूछने लगे और उस समय इतना विवेक हो, उस समय कि आप कौन सा, किसका, आप बर्थडे किसका पूछ रहे हैं, आत्मा का कि शरीर का? स्वामी राम जब गए जापान और उनकी बोलने की शैली भी बड़ी गजब की, वो कभी भी अपने लिए प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करते थे। हम लोग अक्सर प्रयोग करते मैं, तुम और वो, ये तीन पुरुष है हमारे पास। दूसरे के लिए, सामने वाले पुरुष के लिए प्रयोग करना हो तो तुम, तृतीय पुरुष के लिए प्रयोग करना हो तो प्रथम, और अपने लिए प्रयोग करना हो तो उत्तम, क्योंकि हम सब अपने आप को उत्तम समझते हैं। मैं जाता हूं, तुम जाते हो, वो जाता है। अक्सर जब हम अपने लिए कहते हैं तो उत्तम पुरुष का प्रयोग करके, लेकिन स्वामी राम जब प्रयोग करते थे अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करते थे, मैं ऐसा नहीं, हमेशा प्रथम पुरुष की तरह ही प्रयोग करते थे। स्वामी राम बोलते थे, राम गए वहां, उन्होंने भिक्षा ली और उसके बाद ध्यान में बैठ गए। स्वामी राम अमुक देश में गए और वहां के देश के लोगों ने ये बात बोली, उन्होंने ये काम किया, स्वामी राम का अमुक जगह पर अपमान हुआ, स्वामी राम ने सहन कर लिया। लोग सोचने लगे बात किसकी कर रहे हैं, पहले तो लोग ही नहीं समझ पाए कि ये बात अपनी कर रहे हैं कि दूसरे की कर रहे हैं। अक्सर जब आप बात करते हैं तो मेरा अपमान हुआ ऐसा बोलेंगे आप, मेरा अपमान हुआ, और स्वामी राम ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते राम, वो बोलते थे कि राम का अपमान हुआ, कौन राम, वो शरीर को लेके बोलते थे। वहां पार्थक्य बोध था, क्षण क्षण प्रतीति थी, ये शरीर है और ये आत्मा है। और जब हमारे सामने ऐसी कोई बात आती है तो हम भूल जाते हैं। बात जब मरने की आती है तो आपको सचमुच क्या लगता है? शरीर मरेगा ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा ऐसा लगता है? जब बात जब मरने की आएगी तो आपको ये नहीं लगता है कि शरीर मरेगा, ये तो बहुत विचार करने के बाद आपको तत्क्षण संवेदना कौन सी प्रकट करनी चाहिए, भाई मरने वाला है तो ये शरीर है और आत्मा जो है वो न जायते म्रियते, न वो पैदा होती है और न वो मरती है। अच्छा, एक बात मैं आपको पूछ लेता हूं, आप जो अपना जन्मदिन मनाते हो वो आपने अपना जन्म देखा है कि सुना है? आप लोगों में एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिन्होंने अपना जन्म देखा हो, और बहुत संभावना कम है कि हम अपना मरना देखेंगे। नच स्वजन्म नाशम वा दृष्टुम अर्हति कश्चन, न हम अपना जन्म देख सकते और न हम अपनी मृत्यु देख सकते हैं। इसलिए बड़े से बड़े लोग अपने जन्म तारीख के बारे में कंफ्यूज हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा, उसको ही नहीं मालूम अपने जन्म तारीख, वो भी कंफ्यूज है कुछ। अरे बड़े बड़े लोग, उनको नहीं मालूम, एक दिन आगे एक दिन पीछे, जन्म तारीख लिखी कहीं है कहीं कुछ है। इसलिए अक्सर बहुत से लोगों का ऐसा होता है जन्म तारीख होती कुछ है और उनके सर्टिफिकेट में लिखी कुछ होती है, और वो बोलते भी भैया लिखा तो ये है लेकिन वो हमारी नहीं है। ये आदमी अपने जन्म से इतना कंफ्यूज है, उसका कारण है ये परोक्ष ज्ञान है। ये जो पैदा होने का जो बोध है ना, ये परोक्ष बोध है, वास्तविक नहीं, सुनी सुनाई चीजें हैं। जन्म और मृत्यु हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, पैदा होना और मरना हमारी अनुभूति नहीं है। कोई आदमी अपने पैदा होने और मरने का अनुभव कर नहीं सकता है। अच्छा, आप सो रहे हैं और मैंने आवाज लगा दी, आप सो रहे हैं, आपने कहा हां, यदि आपने आवाज लगा दी है इसका अर्थ आप अभी सो नहीं रहे हैं, आप आवाज दे रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं हां मैं सो रहा हूं, इसका मतलब अभी आप सोए नहीं है। और सचमुच आप सो गए तो हरिओम, सो गए, और सामने वाला भी समझ लेगा ओहो अब ये सो गए, कोई आवाज नहीं आई, प्रतिक्रिया नहीं आई। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक मरे नहीं हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं फोन पर, भैया मैं मर रहा हूं, आप फोन करके सूचना देना चाहते हैं, भाई मरूं तो सूचना देना पहले, सामने वाले ने बोला और फोन भी बगल में रखा और आपने फोन पर सूचना दी हम मर रहे हैं, तो आप मरे हैं कि जिंदा है? अभी है। अभी मरे नहीं है। आप जब तक कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं या मर गए, तब भी कोई भरोसा नहीं करेगा। आप स्वयं भी बोल दें कि मैं मर गया हूं, तब भी आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं। इसलिए दो का मेल, जीवन और मृत्यु का संबंध, एक काल वृत्तिता संभव नहीं है। जन्म और जीवन और मृत्यु, ये तीन चीजें हमारे सामने हैं। जन्म के बाद जीवन और जीने के बाद मृत्यु है। मृत्यु और जीवन ये दोनों एक काल में संभव नहीं है। यदि जिंदा है तो मरे नहीं है, और यदि मरे हैं तो जिंदा नहीं है। ये दोनों एक काल में संभव नहीं, और जानने की प्रक्रिया का अंग जीवन है। जीवन ही जानने की प्रक्रिया का अंग है, जीवन ही जानने का उपकरण है। यदि जीवन नहीं है तो आप जान नहीं सकते किसी चीज को, ये जीवन है, हमारी इंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, ये जीवन है, ये जीने का आधार है। पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जीवन है। और ये जीवन मध्यकाल है, जन्म के बाद जीवन और जीवन के बाद मृत्यु। इसलिए जानने की प्रक्रिया का अंग उपकरण जीवन है। और ये तीनों भी तीन काल में है, जिस काल में जन्म है उस काल में जीवन नहीं है, जिस काल में जीवन है उस काल में जन्म नहीं है, जिस काल में जन्म है उस काल में मृत्यु नहीं है, और जिस काल में मृत्यु है उस काल में जीवन नहीं है। और संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादिना, हमारे शास्त्र का नियम है, आप किसी चीज को जानना चाहते तो वो संबद्ध होना चाहिए, वो वस्तु जीवन से संबद्ध होना चाहिए, वो वस्तु इंद्रियों से संबद्ध होना चाहिए। संबद्धम वर्तमानम च, संबद्ध हो और वो वर्तमान काल में हो तो हम जान सकते हैं। गृहते चक्षुरादिना, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, यदि वो वस्तु वर्तमान में और इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई हो। जो वस्तु वर्तमान में ना हो और इंद्रियों से जुड़ी हुई ना हो, आप उसको कैसे जानोगे? इसलिए जीवन का जो जानने का उपकरण है और मृत्यु जो जानने का विषय है, ये दोनों एक काल में संभव ही नहीं है। यदि जीवन है तो मृत्यु नहीं है, और यदि मृत्यु होगी तो जीवन नहीं होगा। इसलिए शास्त्र ने कहा, नच स्वजन्म नाशम वा दृष्टुम अर्हति कश्चन, कोई भी व्यक्ति न अपने जन्म को जान सकता है और न अपने मृत्यु को जान सकता है। ये तो सुनी सुनाई चीजें, आप पैदा हुए और ये सुनी सुनाई चीजें, आप मरोगे। न पैदा होना हमारी दृष्टि का विषय है और न मरना हमारे दृष्टि का विषय, उसके बाद भी हम इतना क्यों डरते हैं? फिर हम मरने से इतना क्यों डरते हैं? जो आदमी जितना ज्यादा खुशी, आनंद, मस्ती, उमंग के साथ जन्मदिन मनाएगा उतना ज्यादा डरेगा मरने से उतना ज्यादा मरेगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी गहरी वेदना होगी कि मैं मरूंगा। तो आप मरने से क्यों डरते? कभी देखा तो है नहीं, अपना मरना तो हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, आपने दूसरे के मरने को भी देखा है क्या? हम मरने के बाद की घटनाएं देखते हैं, लेकिन जो मृत्यु, वास्तविक जो मृत्यु है, उसको हम कहां देखते हैं? मरना क्या होता है, मरना क्या होता है, ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। लोग बोलते हैं मर गया, उसके बाद छू के देख लेते, मालूम पड़ा कि नहीं? तो आप जिसको छू रहे हैं और छूने के बाद अनुमान लगा रहे हैं मर गया, ये क्या जीवात्मा और स्थूल शरीर का जो वियोग है? जीवात्मा स्थूल शरीर से निकल गई, वो निकलते समय आपने देखा क्या? नहीं देखा। वो निकलने की प्रक्रिया के दृष्टा आप बने क्या? निकल जाने के बाद कोई मकान छोड़ के चला गया और उसके बाद आपको मालूम पड़ा, लेकिन वो चले जाते समय उसका जो वियोग है, अलग होते समय आपने देखा क्या? और अलग होना ही तो मृत्यु है। जो घटित हुई घटना, जो वियोग रूप जो घटना है, मृत्यु माने सूक्ष्म शरीर जीवात्मा और स्थूल शरीर का जो वियोग है, वो वियोग रूप जो मृत्यु है, उसके दृष्टा तो हम बने नहीं। इसलिए वास्तविकता तो ये है कि हम मरने से डरते नहीं, हम बिछुड़ने से डरते हैं, हम जीवन के बिछुड़ने से डरते हैं। जीवन के प्रति गहरी, बहुत गहरी हमारी आसक्ति है और मृत्यु हमें जीवन से अलग कर देती है, और हम जीवन से अलग होना नहीं चाहते हैं। इसलिए डरना मरने का नहीं, भय मरने का नहीं है, अपितु जीवन की बिछुड़ने का है। और जीवन में आसक्ति ना हो आपकी, बिल्कुल तो आप मरने से डरेंगे क्या? इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष, तत्वनिष्ठ महापुरुष मरने से डरते नहीं, क्योंकि जीवन से आसक्ति नहीं है। इसलिए जीवन का जो विछोह है, जीवन से जो अलग होना है, जीवन से जो विरह है, वह नहीं है। एक सामान्य उदाहरण मैं आपको बता दूं, आप छोड़ने से डरते हैं, छोड़ने से डरते हैं क्योंकि उस वस्तु के प्रति अटैचमेंट है। लेकिन उस वस्तु के प्रति अटैचमेंट आपको ना हो तो आराम से छोड़ दें, अथवा जहां से आप जुड़े उससे भी और अच्छी चीज मिलने वाली हो तो आपको बोल दे, भैया ये जो मकान है इसमें एसी नहीं है, मच्छर है, जाली भी नहीं है, बहुत सारी मक्खियां, बहुत गंदगी पूर्ण वातावरण में आपका एक कमरा है, छोड़ो। तो आप बोलेंगे भैया नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको बोले कि इससे अच्छा कमरा देंगे तो, और आपको दिखा भी दे जाके, और चट से छोड़ देंगे, चट से छोड़ देंगे। ऐसे जो शरीर है ना, ये जो शरीर है, आपको सचमुच बताए कोई बढ़िया शरीर मिलेगा तो, पुराना 80 साल का जर्जर हुआ घुटने दर्द वाला और कोई योगी पुरुष आके बोले कि छोड़ो यार इस शरीर को, आप मानोगे नहीं, बोलेंगे बाबा नमो नमो, क्या नाराजी है, क्या हमको मारना चाहते हो। लेकिन आपको सचमुच कोई बढ़िया शरीर, अब वो जमाना भी क्या आने वाला है क्या? क्यों गिरीश बाबू, जमाना आएगा क्या कि शोरूम में गए हैं सेठ जी, शोरूम में गए क्या करने के लिए? अपने शरीर बदलने के लिए। कोई ठिकाना नहीं है। ये प्रकृति और प्रकृति के रहस्य जो है बहुत अद्भुत हैं। हो सकता है कि आप कहां गए हैं, बोले अमुक शोरूम में गए, मॉल में गए, बोले वहां बहुत अच्छे शरीर मिलते हैं, महंगे हैं थोड़े, और वहां पर शरीर बदल दे रहे हैं बस। कोई कुछ चार दिन के लिए भी बदल देंगे, क्योंकि वो पुराना जो शरीर रिपेयरिंग के लिए डाल दिया है। अब वो जमाना आने वाला है, पुराना शरीर कहां है सेठ जी आपका? बोलेंगे रिपेयरिंग के लिए रखा है। ये किराया का लिया है। अरे भाई इतना पैसा नहीं है ना नया खरीदने के लिए, जब पैसा आएगा तो खरीद लेंगे। आसक्ति जो है वही हमें दुख देती है। यहां मृत्यु का भय नहीं है, जीवन के छूटने का भय। आत्मा तो अजर है, अमर है, केवल उसको जानना है। इसलिए हमारी जो मृत्यु की जो संवेदना और जन्म की जो संवेदना, ये शरीर की संवेदना है। ये जन्म और मृत्यु शरीर का है, आत्मा का नहीं है। इसलिए आचार्य यम ने कहा, न जायते न म्रियते विपश्चित नायम कुतश्चिन न बभुव कश्चित। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कल मैं आपको बताऊंगा ये विपश्चित शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, गीता जी में कदाचित शब्द का प्रयोग किया है, और यहां पर विपश्चित, और यहां विपश्चित शब्द का अर्थ होता है विपश्चित दोषज्ञ। ये आत्मा का बोधन करते हुए भी, ये आत्मज्ञानी का बोधन करता है शब्द, माने उच्चतर जो साधक हैं वो अपनी साधना के द्वारा आत्म तत्व की गहरी अनुभूति करता है। तो अनुभूति कैसी होती है उसकी, वो है न जायते म्रियते वा विपश्चित। ये गहरी अनुभूति है साधक के जीवन की। हम भी आत्मा का अनुभव करते हैं और एक साधक भी आत्मा का अनुभव करता है। उन दोनों की अनुभूति में अंतर है, एक पैदा होने वाला मरने वाला और एक अजन्मा मृत्यु से रहे। बहुत गहरी बात है, कल बताएंगे। आप सीधे बैठ जाएंगे। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। 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 ॐ
ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ ह्रीं नमः शिवाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।